अनगार धर्मामृत लेक्चर नंबर 4।
ओम नमः सिद्धये
पंडित आशाधर जी लिखित यह अनगार धर्मामृत नामक ग्रंथ है और इसको अभी पढ़ते हुए हम आए हैं पृष्ठ संख्या 9 पर। 9 यहाँ जो दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है वहां से पढ़ेंगे। अरहंत परमेष्ठी, कल हमने दिव्य ध्वनि के बारे में कुछ बातें देखी थी कि जो समस्त प्राणियों के लिए हितकर है, वर्ण सहित नहीं, निरक्षर अक्षर बिना की, यानी वो ऊठों से वगैरह नहीं फिरती है और फिर कहते हैं कि इच्छा के बिना ही होती है। तो हमारी तो वाणी इच्छा से होती है ना, इच्छा साथ साथ होती है वहां पर, इच्छा होती तो वाणी खीरे ही ऐसा भी नहीं। आगे देखते हैं हम यहाँ पर अरहंत परमेष्ठी की बात। अरहंत परमेष्ठी इस दिव्य ध्वनि के द्वारा, ये हमने ऊपर पढ़ा था ना, 2 नंबर
पढ़ा था।
वो ये उसी के हुए, हम विशेष अर्थ चल रहे हैं ना। हाँ, श्लोक कल पढ़ा था, तो यहाँ 2 लिखा है ना, ये तो उसके टीका का 2 आंकड़ा लिखा है, तो हम पढ़ेंगे। अरहंत परमेष्ठी इस दिव्य ध्वनि के द्वारा मोक्ष मार्ग की जिज्ञासा से समोसरण में समागत भव्य जीवों को उपदेश देते हैं। क्या कहें, मोक्ष मार्ग की जिज्ञासा जिसे है वही जाएंगे ना वहां पर समोसरण में, सुनने को कौन जाएगा, जिसको जिज्ञासा है वो जाएंगे। समागत यानी आए हुए भव्य जीवों को उपदेश देते हैं, कहा भी है नीचे, दृग विशुद्ध्यादीर्थकृत्व पुण्योदयात सही शास्यायुष्मान सतोतिघ्न जिज्ञासुर तीर्थमिष्टदम। उसका अर्थ यह है, दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं से बांधे गए, यानी अरिहंत भगवान जो तीर्थंकर है, पूर्व अवस्था में दर्शन विशुद्धि आदि जो 16 भावना है, उन परिणामों के कारण तीर्थंकर नाम कर्म जो बंधा था, तीर्थंकर पुण्य कर्म के उदय से वो बंधा था, तो पहले अभी उसका 13वें गुण स्थान में उदय कर दिया। ये नियम है, जो तीर्थंकर प्रकृति बांधता है उसका उदय होगा ही होगा, ऐसे अन्य प्रकृतियों के बारे में नहीं कह सकते। जैसे आहारक द्वीप का बंध किया तो आहारक शरीर बनाएगा ही, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसने पड़ा है बांधा हुआ। अन्य भी कितने ही पाप प्रकृतियां मान लेते, किसी ने बांधी नरक गति बांधी, तो उसका उदय आएगा ये कोई जरूरत नहीं है, गति की बात करें आयु की नहीं, ख्याल में ही बात। तो यहाँ तो तीर्थंकर प्रकृति बांधी है तो उसका उदय आएगा ही जब, हाँ नहीं भी आ सकता किसी किसी के बारे में, अभी उस हर एक प्रकृति को अलग अलग सोचना पड़ेगा, फिर भी उनका उदय नहीं भी हो ये बात हो सकती है, क्योंकि अभी ये जो उदय के बारे में है कितने ही तो ध्रुव उदय ऐसी प्रकृतियां हुई, ध्रुवोदयी बंधने में भी कितनी ध्रुवबंदी होती है, अब उसका सारा हिसाब किताब ही अलग है। अभी तो हम इतना ही देखेंगे, समझना है तो उसको सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। हम सुबह आना, अभी शाम को नहीं आ सकते, सुबह क्या आएंगे। दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं से बांधे गए तीर्थंकर पुण्य कर्म के उदय से, यानी वो उदय वहां निमित्त रूप से है। भगवान तीर्थंकर अरहंत, अब ये केवल अरिहंत नहीं है तो तीर्थंकर अरिहंत है, तीर्थंकर का भी जीव बेसिकली अरिहंत तो यानी जीव नहीं, तीर्थंकर जब हम उनको कहेंगे अरिहंत अवस्था प्राप्त होने पर उनको तीर्थंकर कहेंगे। हाँ पहले हम कहते हैं परंतु वो भावी नैगम नये से यानी भविष्य में होने वाले हैं, उस अपेक्षा से उनको कहेंगे तीर्थंकर का जन्म हुआ, उन्होंने वो तो दीक्षा ली, परंतु वो तभी तक तीर्थंकर नहीं है, होने वाले हैं। तो कहते भगवान तीर्थंकर अरहंत जिज्ञासु प्राणियों को इष्ट वस्तु को देने वाले और संसार की पीड़ा को हरने वाले तीर्थ का उपदेश देते हैं। ये तीर्थ का यानी मोक्ष मार्ग का उपदेश, तीर्थ यानी तरना, एक्चुअली तीर्थ का अर्थ ही होता है उपदेश। इष्ट वस्तु को देने वाले, कौन सी इष्ट वस्तु है? हाँ मोक्ष का रास्ता, मोक्ष का मार्ग बता रहे। अरि यानी मोहनीय कर्म का हनन करने से, अरि का अर्थ होता है शत्रु, तो कोई बाह्य को शत्रु नहीं कहा अन्य किसी जीव को, यह तो मोहनीय कर्म। अभी यहाँ तो ये मोहनीय कर्म के ऊपर, यहाँ तो अपने जो भाव है मोह राग द्वेष के परिणाम वही अरि है। तो मोहनीय कर्म का हनन करने से अथवा ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अंतराय कर्म का घात करने से उन्हें अरिहंत कहते हैं। अरि यानी शत्रु, हंत यानी उसका घात किया, इसलिए उनका नाम है अरिहंत। ये अरि और दूसरा शब्द क्या आता है, तीन के तीन को मिलकर मोहनीय को अरि कहते हैं, अरि रज रहस्य विहीन ऐसे शब्द होते वो मुनिंग है। अरि यानी मोहनीय और रज यानी वो ज्ञानावरण दर्शन। हम तो जो कहें पाठ पढ़ते हैं तो उसका यही मीनिंग है ये मालूम है। हाँ हाँ आप तो अभी पढ़ रहे हो परंतु उसका मीनिंग अभी पता चला है ना, उनको अरिहंत कहते हैं। और उक्त कर्मों को नष्ट करके अनंत चतुष्टय स्वरूप को प्राप्त कर लेने से, उक्त कर्म यानी ये चार कर्म जिसको हम घाती कर्म कहते हैं और उनका नाश हुआ है तो क्या प्रकट हुआ, तो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। अनंत चतुष्टय का नाम जानते हैं? बोलो। बहुत अच्छा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, इसको अनंत चतुष्टय कहते हैं। उस स्वरूप को प्राप्त कर लेने से इंद्रादि के द्वारा निर्मित अतिशय युक्त पूजा के पात्र होने से अरहंत कहते हैं। पहले कहा अरिहंत, अब अरहंत यानी त्रिलोक के द्वारा जो पूजित है इसको कहते हैं अरहंत। तो यहाँ के इंद्रादि के द्वारा निर्मित अतिशय युक्त पूजा के पात्र यानी उनकी पूजा के लिए वो योग्य है, पूजनीय है, इसलिए कहते हैं अरहंत। वे अरहंत हमारी रक्षा करें। देखो दोनों को लिया यहाँ पर, अरिहंत भी नाम आता है और अरहंत भी आता है, प्राकृत में तो अरुहंत भी शब्द आता है। वे अरहंत हमारी रक्षा करें, ये मंगलाचरण रूप अरहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। अभ्युदय और मोक्ष से भ्रष्ट करने वाली बुराइयों से हमें बचावे, ये जीव ही स्वयं उनके सामने अपने विचार प्रकट करता है। अरिहंत तो कुछ करने वाले नहीं, न कुछ देने वाले है, न रक्षा करने वाले है, न वो संसार से हटाकर मोक्ष ले जाने वाले, स्वर्ग और मोक्ष भी वो देने वाले नहीं है। और स्वर्ग मोक्ष से भ्रष्ट करने वाली बुराइयों से भी हम खुद बचे तो बच सकते हैं, फिर भी अरहंत के उपदेश को सुनकर हम करते हैं तो उन्होंने किया ऐसा कहेंगे हमसे, और हम ऐसी भावना करेंगे वे हमें बचा रहे। अभ्युदय ने जिसको कहेंगे प्रोग्रेस, प्रगति, प्रोग्रेस, अभ्युदय ने कल्याण, अच्छा अभ्युदय ने कल्याण, उत्कर्ष जिसको हम कहेंगे, ऊपर अभ्युदय होना, क्या अरिरज रहस्य विहीन, रहस्य का पहले हमने पुस्तक में लिखा है अरिरज रहस्य, वही अरिरज रहस्य, रहस्य अरी रज रहस्य अंतराय के लिए, क्योंकि वो शब्द मिलकर चार घाती कर्म होते हैं, या रहस्य उसके लिए होगा तीन के लिए, और रज का अर्थ होता है वो कर्म के लिए, किसमें मिलेगा अपने पुस्तक में, जब हम पढ़े थे उसमें लिखा के रखा वो काली पुस्तकों के ऊपर थे शायद, देखो चलो हम आगे पढ़ेंगे तब तक आगे। अरहंत भगवान के द्वारा उपदिष्ट, उपदिष्ट ने जो उपदेश किया हुआ उसको उपदिष्ट कहते हैं, उपदिष्ट अर्थक यानी उन्होंने जो बात बताई है, अर्थ बताया है, शास्त्र में निबद्ध करने के द्वारा, निबद्ध यानी शास्त्र बनाए उसको गूंथा, अरिहंत ने बताए हुए जो अर्थ है, उन्होंने जो तत्व बताए है, वो सारा जो उन्होंने उपदेश दिया है वो शास्त्र रूप उसकी रचना की है, तो कहेंगे शास्त्र में निबद्ध, निबद्ध ने उसमें गूंथा, उसे गूंथना को कहते निबद्ध करना, निबद्ध करने के द्वारा सकल जगत के उपकारक गणधर देव आदि का स्मरण कर, भगवान की तो दिव्य ध्वनि खीरी परंतु वहां के सामने एक वाले जीव, हाँ आप कुछ बता रहे, हरी रज
का अर्थ
आपने वही बताया ना, अंतराय, लक्ष्मी जी ने वही बताया, रज में दो लेना और रहस्य में अंतराय लेना, बस हो गई। अभी गणधर देव आदि का स्मरण कर, क्योंकि ये गणधर इनकी रचना नहीं करते तो आगे अन्य जीवों को जो परंपरा से आज तक ये बातें हमारे तक आई है वो कैसे आती, इसलिए पहले उनका स्मरण करते हैं। तीन नंबर ऊपर सूत्रग्रथ गणधरान अभिन्न दश पूर्विण प्रत्येक बुद्धान अध्ययनी श्रुत के लीनस्तथा, सूत्रों की रचना करने वाले गणधरों, ये जो बारह अंगों की रचना हुई वो सूत्र के रूप में की है, इसलिए कहते सूत्रों की रचना करने वाले गणधरों अभिन्न दश पूर्वियों, ये दश पूर्वी क्या होता है, हाँ चौदह पूर्व में से दस पूर्वों तक का जिसका अभ्यास है, अकेला दसवा नहीं, दसवें पूर्व तक का जिनका अभ्यास है उनको दस पूर्वी कह रहे हैं। एक होते हैं चतुर्दश पूर्वी, चौदह के चौदह पूर्वों का अभ्यास होता है, और एक होते हैं दस पूर्वी, दश पूर्वी में दो होते हैं, एक भिन्न दश पूर्वी और एक अभिन्न दश पूर्वी। तो यहाँ किसकी याद की? अभिन्न दश पूर्वी। भिन्न दश पूर्वी तो वे है कि दसवें पूर्व के अभ्यास के बाद उनके ये जो कोई विद्याएं वगैरह प्रकट होती है तो वो तो च्युत हो जाते हैं, तो वहां से वो तो भ्रष्ट हो जाते हैं, तो इसको उनको भिन्न दश पूर्वी कहते हैं। तो यहाँ अभिन्न दश पूर्वियों की बात। तो सूत्रों की रचना करने वाले गणधरों, अभिन्न दश पूर्वियों, प्रत्येक बुद्धों और श्रुत केवलियों का मैं ध्यान करता हूँ। एक होता है प्रत्येक बुद्ध और एक होता है बोधित बुद्ध। अभी हम कहेंगे उसको अर्थ बताएंगे। बुद्ध है ना, वो तो ज्ञानी गणधर ही होता है। देखो, जिनेन्द्र देव के समोसरण में आए हुए मुनि आदि 12 गणों को जो धारण करते हैं उन्हें मिथ्यात्व आदि से हटाकर सम्यक दर्शन आदि में स्थापित करते हैं उन्हें गणधर या धर्माचार्य कहते हैं। 12 गणों को धरने वाले इसलिए गणधर। 12 अंगों को नहीं, 12 गणों को नहीं, मुनि आदि 12 गण। 12 प्रकार के मुनि हो गए। गण कहा ना, गणाचार्य भी कहते ना, गणाचार्य गणधर। हाँ, कहाँ ऊपर मिला क्या आपको गणधरण? गणधरण गणान द्वादश इत्यादि जिनेन्द्र सभ्यान धारयन्ति। वे अरहंत भगवान के द्वारा उपदिष्ट अर्थ की, यानी उन्होंने जो उपदेश दिया है उसका 12 अंगों और 14 पूर्वों में रचना करते हैं। एक्चुअली 14 पूर्व ये 12वें अंग का ही एक भाग है। ऐसे 12 अंग और 14 प्रकीर्णक जिसको कहेंगे, अंग बाह्य श्रुति जिसको कहेंगे, 12 अंगों के इन एडिशन 14 प्रकीर्णक हो गए। फिर भी ये कहने की पद्धति पड़ी है 12 अंग और 14 पूर्व। हाँ, प्रकीर्णक अलग है। 12 अंग में 5 भेद है, याद है? बोलो। परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, चूलिका, पूर्वगत और चूलिका। तो ये पूर्वगत के 14 पूर्व होते भेद, और ये 12 अंग अलग और वो 14 प्रकीर्णक वे अलग। हाँ, तो मुनियों के आचार संबंधी वो सारे ग्रंथ है। दश पूर्वी, अब ये दश पूर्वी बिकॉज एक सूत्र है तत्वार सूत्र में, आद्य च पूर्व विद, इसका अर्थ मालूम? आद्य च पूर्व विद, क्या आद्य पूर्व विद? आद्य शुक्ल ध्यान के पहले दो है वो पूर्व विदों के ही होते हैं। इसका अर्थ है श्रेणी वे ही चढ़ते हैं जो पूर्व के ज्ञाता है। कौन? दस पूर्वी वाले या 14 पूर्वी वाले, वे ही श्रेणी चढ़ते हैं। ये नियम है, हो जाता है। हाँ, चिंता नहीं होना, ज्ञानावरण का अनुभाग इतना कम हो जाएगा वो अपने आप हो जाएगा। वो तो हम तो केवल सिद्ध शुभूति को याद कर लेते हैं, अरे उन्होंने कर लिया हमको क्या, अभी हम भी बिल्कुल हो गया होगा, ये तो सहज रूप से हो जाता है। यानी श्रेणी वही चढ़ते जो पूर्व के ज्ञाता है, पूर्वविद कहते हैं। तो तभी तो ये करना नहीं पड़ो बाबा। तत्वार सूत्र में ये है, और ये शिवभूति के मुनि के बारे में धवला में भी बात आई कि श्रेणी में तो इतना हो जाता उनका ज्ञानावरण का। तो यहाँ दश पूर्वी जो है यानी 10 पूर्व के ज्ञाता, वो दो प्रकार के, भिन्न और अभिन्न के भेद से दो प्रकार के होते हैं, यानी भिन्न दश पूर्वी और अभिन्न दश पूर्वी। उनमें से जो 11 अंगों को पढ़कर, उसके बाद 12वां अंग है ना, 11 अंगों के तो पढ़ लिया, पुनः परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चूलिका, इन पांच अधिकारों में निबद्ध, यानी इन पांच अधिकारों से बना हुआ। बारहवें दृष्टिवाद अंग को, उसका नाम है दृष्टिवाद अंग, बारहवें अंग का नाम ही दृष्टिवाद अंग है। उसको पढ़ते समय जब उत्पाद पूर्व से लेकर, पहले पूर्व का नाम है उत्पाद पूर्व, तो वहां से लेकर पहला दूसरा तीसरा इत्यादि, दसवें पूर्व उसका नाम है विद्यानुवाद पढ़ते हैं, तो विद्यानुवाद के समाप्त होने पर, यानी दस पूर्व का अभ्यास हुआ उनका, पढ़ाई उसकी अध्ययन समाप्त हुआ, तब 700 लघु विद्याओं के साथ 500 महाविद्याएं उपस्थित होकर पूछती है। वो विद्या के जो कुछ देव देविया वगैरह होती है वो सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहेगी और पूछेगी, यानी वो विद्या उनके प्राप्त हुई है इस कार्य को, भगवान क्या आज्ञा है, ऐसा पूछने पर जो उनके लोभ में आ जाता है, उसमें तो कितनी हुए ऐसी वशीकरण है, तारण मार, वो तो मेले विद्या वगैरह वो सब, क्योंकि भगवान क्या नहीं जानते, सब विद्याओं के बारे में जानते हैं। ये विद्याएं प्राप्त होकर भी उसके बारे में उनके तो कोई विकल्प ही नहीं है, फिर भी इतने प्राप्त होने पर ऐसे भी कोई जीव है, क्या होता है, वो विद्याओं के लोभ में आ जाता है, वह भिन्न दशपूर्वी होता है, यानी इतने तक जाकर वहां से च्युत हो जाता है। हाँ उसमें आते ही नहीं है रुद्र वगैरह, जो अन्य भी जो होते हैं भिन्न दशा पूर्वी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो भी भावलिंगी संत होते हैं और इतना होकर भी च्युत हो जाते हैं। किंतु जो उनके लोग में नहीं आता, क्योंकि ऐसी विद्याओं का अवलंबन कौन लेगा, वो तो हाँ छूट जाता है, किंतु जो उनके लोभ में नहीं आता और कर्मक्षय का ही अभिलाषी रहता है वह अभिन्न दशपूर्वी है। परोपदेश से निरपेक्ष जो श्रुत ज्ञानावरण के एक सूक्ष्म विशेष से स्वयं ज्ञानातिशय को प्राप्त होते, देखो यह क्या कहा, परोपदेश से निरपेक्ष, यानी भगवान की वाणी सुनकर इन बारह अंगों का ज्ञान होना, भगवान की हो या गंधर्वों की हो या अन्य जो उपदेश हम सुनकर जो ज्ञान हो जाता है, तो ये परोपदेश से, परंतु परोपदेश के बिना, उसको कहेंगे परोपदेश से निरपेक्ष श्रुत ज्ञानावरण के सूक्ष्म विशेष से। अब श्रुत ज्ञानावरण का सूक्ष्म ऐसा हुआ है, इतना वो मंद मंद मंद, यानी उघाड़ बहुत हुआ है, यहाँ ये ना बात, यानी सहज रूप से हुआ है, आपने अभी जो श्रुत शुभूति की बात हमने की थी, सहज वो पढ़कर नहीं हुआ था, वो तो सहज होता ही है, तो कहते सूक्ष्म विशेष से स्वयं ज्ञानातिशय को प्राप्त होते, यानी उनका ज्ञान का विकास बहुत हो जाता है, उन्हें प्रत्येक बुद्ध कहते हैं, समस्त श्रुत के धारी को श्रुत केवली कहते हैं। बोधित यानी परोपदेश से, वो बोधित, किसी ने उनको बोध कराया है, यानी उपदेश सुनकर हुए हैं, वो बोधित हुए, ये प्रत्येक बुद्ध समस्त श्रुत के धारी को श्रुत केवली कहते हैं। समस्त श्रुत यानी पूरा द्वादशांग श्रुत, उसके जो धारी है, उसके जो उसके धारी ने वो बिल्कुल उसमें जान लेते पूरा का पूरा, केवल सुन लिया ऐसा नहीं, वे श्रुत ज्ञान के द्वारा सर्वज्ञ केवल ज्ञानी के सदृश होते हैं, इसलिए उन्हें श्रुत केवली कहते हैं, उनको श्रुत केवल ज्ञान भी कहते हैं, केवल ज्ञानी जैसा वो श्रुत ज्ञान ज्ञानी है। कौन
ना, ये केवली नहीं है, शुद्ध केवली है, वो है तो क्षोभम ज्ञानी, और केवल ज्ञानी है वो तो क्षायिक ज्ञानी है, वो तो अरिहंत अवस्था वाले हैं, और ये शुद्ध केवली है तो मुनिराज है अभी, यानी अरिहंत अवस्था उनके प्राप्त नहीं है। आचार्य समंत भद्र ने अपने आप्त मीमांसा में शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान को सर्व तत्व प्रकाशक कहा, सभी तत्वों को जानने वाले सर्व तत्व प्रकाशक। अंतर यह है कि शुद्ध ज्ञान परोक्ष होता है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। इन्होंने प्रत्यक्ष जाना, इन्होंने परोक्ष, परंतु वैसा ही जाना जैसे केवल ज्ञानी ने, केवल ज्ञानी ने जो परोक्ष प्रत्यक्ष जाना वही इन्होंने परोक्ष रीति से जाना। इवन ये जीव कांड में भी गाथा आती है ना कि जो शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में अंतर मानता है वो मिथ्या दृष्टि है सब। यानी क्या, ये शुद्ध ज्ञान भी इतना जानता है, क्योंकि देखो ये केवल ज्ञानी ने स्वयं जानकर उपदेश दिया और उनका उपदेश से तो हमने सब कुछ जान लिया, तो उन्होंने तो प्रत्यक्ष जाना और हमने परोक्ष जाना, पर जाना नहीं जाना ऐसा नहीं है, पूरा ही जान लिया उन्होंने भी। हम अपने बारे में कहेंगे उन्होंने भी केवल ज्ञानी ने छह द्रव्य जाने और हम आप भी छह द्रव्य जान रहे हैं, इस ऐसे ये संपूर्ण श्रुत को जानने वाले वो सब जान लेते हैं। ये सब यानी ये सब कौन कौन, गणधर, अभिन्न दश पूर्वी, प्रत्येक बुद्ध और श्रुत केवली गणितकार होते हैं, भगवान की वाणी के आधार पर ग्रंथों की रचना करते हैं। इसी से ग्रंथकार उन्हें ग्रंथकारता और गणधरपणा आदि गुणों का प्रार्थी होकर उनका ध्यान करता है। ग्रंथकार ने आशाधर जी उनके ग्रंथकारीपणा और गणधरपणा, ये जो हमने देखे गणधर है और अभिन्न दश पूर्वी है, प्रत्येक बुद्ध है, श्रुत केवली है, जिन्होंने मूल ग्रंथों की रचना की है, तो ये जो ग्रंथकार ने पंडित आशाधर जी भी उनके समान ग्रंथकार होने के लिए और गणधर पने की गुण प्राप्त होने के लिए उनके प्रार्थी उनकी प्रार्थना करते, उनका ध्यान करते हैं, तथा उन्हें अपना ध्येय ध्यान का विषय निश्चय करके ध्यान में प्रवृत्त होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आगम में कौन सा आधार दे रहे, मूलाराधना नाम का जो है, और मूलाचार गणधर, प्रत्येक बुद्ध, अभिन्न दश पूर्वी और श्रुत केवली के द्वारा रचित को ही सूत्र कहा है। ये जो मूल सूत्र जिसको कहेंगे ना, उस दिन बात आई थी वो काल अकाल की, तब इनके द्वारा रचित जो होते उसको सूत्र कहने में आया। उसी को दृष्टि में रखकर आशाधर जी ने सूत्र ग्रंथ के रूप में उनका स्मरण किया है। सूत्र ग्रंथकार चाहिए, यहाँ सूत्रकारपना और गणधरपना या प्रत्येक बुद्धपना या श्रुत केवलीपना दोनों ही करणीय है। अतः उन गुणों की प्राप्ति की इच्छा से ध्यान करने वाले के लिए वे ध्यान करने के योग्य है ऐसा निश्चय होने से ही उनके ध्यान में ध्याता की प्रवृत्ति होती है। ध्याता ने ध्यान करने वाला उनका ध्यान करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके गुणों का स्मरण करते हैं और उन जैसे होने की यहाँ भावना है। ये तो यहाँ तो शुभ भाव रूप ही सब चल रही है क्योंकि उनको नमस्कार कर रहे हैं। करने योग्य, हाँ पना लगाया ना, सूत्रकार पना, गणधर पना, यानी गणधर में जो विशेषताएं है वो करनी, यानी वो प्रकट करने योग्य है, यानी वैसा होना योग्य है, ये कहना चाहिए। देखो हम भी ऐसे देखते हैं ना कि हम जैसे श्रीमद जी ने लिखा, हम कब मुनि हो जाएंगे, वन में विचरेंगे, तो मुनि बनने की वहां भावना कर रहे हैं। ऐसे यहाँ तो जो बड़े बड़े गणधर वगैरह हो गए हैं, मैं भी वैसे हो जाऊं, इसलिए उनके स्वरूप का चिंतन, इसलिए कहेंगे उनका ध्यान कर। आगे जिनागम के व्याख्याता आरातीय आचार्यों का स्तवन करते हैं, यानी बाद में जो हुए हैं ना आचार्य, परंपरा से जो ग्रंथकर्ता हुए हैं उनकी बात है। अभी ऊपर हम पढ़ेंगे चार नंबर। कैसा चाल उसकी ताल क्या है, चलो ऐसे पढ़ लेते। ग्रंथार्थ तो गुरु परंपरया यथावश्रुत्वा अवधार्य भवभीरुतया विनेयान् ये ग्राहयन्त्युभय नीतिबलेन सूत्रम् रत्नत्रय प्रणयिनो गणिनः स्तुमस्तान्। हम नीचे उसका अर्थ देखते हैं। जो गुरु परंपरा से ग्रंथ अर्थ और उभय रूप से सूत्र को सम्यक रीति से सुनकर और अवधारण करते, क्या कहा, गुरु परंपरा से ने गणधर आदि ने सूत्र रचे, ये इन सब उसमें ले लिए, गणधर वगैरह जो अभी हमने देखे प्रत्येक बुद्ध या दशपुर वगैरह, तो ये सूत्र परंपरा से आचार्यों के और गुरु परंपरा से चलते रहे, क्योंकि कितने ही आचार्यों ने उसको आत्मसात किया, जिसको हम श्रुति केवली भी कहते हैं, तो उनके उपदेश से उनके शिष्यों ने आत्मसात किया, ये परंपरा चलती है। तो कहते गुरु परंपरा से ग्रंथ को सम्यक रीति से सुनकर, केवल ग्रंथ को नहीं अर्थ को और उभय रूप से, उभय ने दोनों ग्रंथ और अर्थ, तो कहते गुरु परंपरा से, क्योंकि ये कुमकुंदा आचार्य वगैरह हुए वहां तक तो कोई गणधर नहीं थे, वो तो पहले महावीर के समय में हो चुके थे, उनके बाद तो जब लगभग 500 वर्ष के बाद अन्य आचार्य हुए, बीच में होते आए, परंपरा तो चलती रही, पर हम कुमकुंदा आचार्य की बात करें, तो उन्होंने कैसे सुना, गुरु परंपरा से सुना, इसलिए कहते गुरु परंपरा से ग्रंथ अर्थ और दोनों रूप से उभय रूप से सूत्र को सम्यक रीति से सुनकर, मूल सूत्रों को सम्यक यानी अच्छी तरह से यथार्थ रीति से सुनकर और अवधारण करके, अवधारण करना यानी वो जान लेना, आत्मसात करना, कंठस्थ तो करना पर उसका अर्थ भी बराबर ठीक तरह से समझना, फिर क्या क्या उन्होंने, संसार से भयभीत शिष्यों को दोनों नयों के बल से ग्रहण कराते, ग्रहण कराने ने उनको ज्ञान कराना, कैसे, दोनों नयों से, व्यवहार ने और निश्चय ने, इस तरह से रत्नत्रय रूप परिणत उन आचार्यों का मैं स्तवन करता, यानी ऐसे ये रत्नत्रय के धारी जिन्होंने इन सूत्रों को सम्यक रीति से सुनकर शिष्यों को वो पढ़ाया। विशेषार्थ यहाँ ग्रंथकार श्री कुंदकुंदाचार्य आदि धर्माचार्यों की वंदना करते हैं। उस जाति में जो उत्कृष्ट होता है उसे उसका रत्न कहा जाता है। इस कथन के अनुसार जीव के परिणामों के मध्य में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप परिणाम उत्कृष्ट है, क्योंकि वे सांसारिक अभ्युदय और मोक्ष के प्रदाता हैं। सांसारिक अभ्युदय ने वो तो ऊंची गति प्राप्त होना, उसको सांसारिक अभ्युदय कहेंगे, ये समझे, स्वर्ग की प्राप्ति है, चक्रवर्ती पद मिलता है, उसको सांसारिक अभ्युदय वहां, और फिर मोक्ष की अलग बताया, मोक्ष के प्रदाता है, प्रदाता ने देने वाले है कौन, अरिहंत भगवान, तो ये रत्नत्रय, इसलिए उन्हें रत्नत्रय कहते, तीन रत्न, त्रय ने तीन, आचार्य कुमकुंद आदि धर्माचार्य रत्नत्रय के धारी थे। उनका रत्नत्रय के साथ तादात्म्य संबंध था। ये किसका किसका साथ बता रहे, किसका किसके साथ है? गुणों के साथ। वो तो तादात्म्य तो नित्य, वो हमारा भी है। यहाँ क्या लिखा है? उनका उनका रत्नत्रय, रत्नत्रय ये तो पर्याय है। ये अभी रविवार को बात आई थी ना, नित्य है क्या अनित्य है, द्रव्य का पर्याय के साथ अनित्य तादात में संबंध होता है। यहाँ अनित्य की बात नहीं, वो तो रत्नत्रय रूप परिणत हुए है, उससे वो अभेद है, तादात में है उनका, ये बात यहाँ बताना चाहते। तो कहते उनका रत्नत्रय के साथ तादात में संबंध था, अतः वे रत्नत्रय रूप परिणत थे, वो पर्याय उन्होंने प्रकट किए। तथा उन्होंने तीर्थंकर गणधर आदि की शिष्य प्रशिष्य रूप, तीर्थंकरों के शिष्य प्रशिष्य को, शिष्यों के शिष्य को प्रशिष्य कहते हैं, या गणधरों के शिष्य और उनके शिष्य उनके शिष्य उसको प्रशिष्य कहेंगे। उस रूप चली आती परंपरा से, यानी आचार्य ने सुना, फिर उनके शिष्यों ने उनसे सुना, उनके शिष्यों ने, वो परंपरा चली आ। तो कहते सूत्र को जाना और अवधारण किया था, जाना था समझना था और धारण किया था, याद रखा था बराबर। सत्य संयुक्तिक प्रवचन को सूत्र कहते हैं। सत्य तो है ही, संयुक्तिक युक्ति सहित है, प्रवचन विशेष वचन। इस समय यहाँ पर गणधर आदि के द्वारा रचित अंग प्रविष्ट का कुछ अंश, अंग प्रविष्ट यानी 12 अंग, उसको अंग प्रविष्ट कहते हैं, और जो 14 प्रकीर्णक है उसको अंग बाह्य कहते हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। ये नया शब्द आया तो पूछना, कोई नहीं समझ में आ रही तो बात। तो अभी इस समय यानी अभी ये पंचम काल में, अभी ये हाल में क्या हो रहा है, तो अंग प्रविष्ट का कुछ अंश और आरातीय यानी बाद में हुए आचार्य, आचार्य उनके द्वारा रचित अंग बाह्य जो कि कालिक उत्कालिक भेद से अनेक प्रकार है, सूत्र शब्द से ग्रहण किया गया है। यानी यहाँ पर सूत्र उनको भी कहने की परंपरा चली। मूल सूत्रों की रचना तो गणधर आदि ने की थी, अब ये जो आचार्यों की परंपरा ने, मुनियों की परंपरा से जो चलते आए हैं, जो अन्य आचार्यों ने भी उसकी रचना की है, तो कहते हैं उसको सूत्र यहाँ कहने में आ रहा है।
प्रविष्ट और अंग बाह्य कहते हैं, उसके बाद में जो उन्होंने आगे उन्होंने लिखा है
तो उसमें उन्होंने कालिक और उत्कालिक दो भेद बनाए, अभी उसकी चर्चा करेंगे। यानी सूत्र कहने से उनको भी इसमें आ गया, क्योंकि वो आचार्यों की परंपरा से जो बने उनको भी कहीं सूत्र कहेंगे। जिसका स्वाध्याय काल नियत होता है उसे कालिक श्रुत कहते हैं, विशिष्ट नियमित काल, नियत काल है उसको कालिक श्रुत कहते हैं, और जिसका स्वाध्याय काल नियत नहीं होता उसे उत्कालिक कहते हैं। ये पहली बार सुन रहे हैं। उस सूत्र को वे आचार्य ग्रंथ रूप से, अर्थ रूप से और उभय रूप से सुनते, उभय ने दोनों रूप से विवक्षित अर्थ का प्रतिपादन करने में समर्थ जो सूत्र, विवक्षित यानी जो पर्टिकुलर, उस सूत्र के द्वारा कुछ पर्टिकुलर अर्थ बताया जाता है, प्रतिपादन करना यानी बताना, उसको उसका कथन करना, प्रतिपादन करने का अर्थ होता है कथन करना। विवक्षित अर्थ यानी भी पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट चल रहा है, कोई विषय चल रहा है तो उसको बताने वाला, उसको विस्तार से कहने वाला, व्याख्यान करने वाला, उसमें जो समर्थ है, जो सूत्र प्रकरण या आन्हिक आदि रूप से वचन रचना की जाती है उसे ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ किसको कहना, सूत्र प्रकरण या उनको आन्निक आन्निक के नहीं अभी उसका या आन्निक आदि रूप से यानी उसी को हाँ प्रकरण को ही आन्निक भी कहेंगे ना या अधिकार हम कहेंगे कुछ आदि रूप से वचन रचना की जाती है यानी जो शब्दों में गूंथे जाते हैं उसको ग्रंथ कहते हैं और उसका जो अभिप्राय होता है उसे अर्थ कहते हैं। जैसे कुमकुंदाचार्य ने ये सब गाथा रूप रचना की वो ग्रंथ हुआ और उसका जो अर्थ है अभिप्राय है जो मीनिंग उसमें से निकलता है मर्म है वो उसका अर्थ है। वे धर्म
गाथा और गाथा हमारे खाली दो ही एक सूत्र जैसा ही हुआ।
गाथा और अर्थ केवल गाथा का अर्थ इतना ही नहीं लेता मात्र पूरा उसका अभिप्राय आशय पूरा उसमें जो भरा पड़ा क्योंकि लाइन तो दो होगी परंतु उसमें आशय कितना गहन होता है वो सारा उसमें अर्थ में आ जाएगा। वे धर्माचार्य कभी ग्रंथ रूप से कभी अर्थ रूप से और कभी ग्रंथ और अर्थ दोनों रूप से सूत्र को ठीक ठीक सुनकर तथा उसकी जितनी विशेषता है उन सबको ऐसा उदाहरण करते हैं कि कालांतर में भी उन्हें भूले नहीं। धारणा में लेते हैं ना तो अवधारण किया ऐसा है तभी तो वे संसार से भेद भी शिष्यों को उसका यथावत ज्ञान कराते हैं। अभी हम तो उन आचार्यों के समय में नहीं थे परंतु कांजी स्वामी ने क्या किया ये ग्रंथों से ग्रंथ तो पढ़े अर्थ को धारण किया उदाहरण किया बराबर समझकर और फिर हमारे जैसे भयभीत शिष्यों को यथावत ज्ञान कराया। कितना खोल खोल कर बताएगी तो उदाहरण किए बिना कौन इतना खोल सकता है। केवल वो सुना और समझा इतना ही नहीं है वो यहाँ पर उसका यानी आत्मा का अनुभव करके वो वाणी निकली है तो उसमें कोई विशेषता जरूर यथावत ज्ञान कराने के लिए वे नए बल का आश्रय लेते हैं। नए बल का आश्रय करने ने कभी वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक या निश्चय व्यवहार यानी जैसे आत्मा क्या है तो मालूम नहीं है तो भेद करके समझाएंगे अलग अलग उसके पार्टिकल यानी गुणों की अपेक्षा भेद करेंगे पर्याय की अपेक्षा करेंगे प्रदेशों की जो कुछ जैसे संभव है या कभी कभी संयोग की अपेक्षा दो द्रव्यों का मिलकर कथन करेंगे इसको कहेंगे व्यवहार नए से कथन और रियलिटी जैसा है वैसा भी बताएंगे दोनों नियम का अवलंबन करेंगे। तो यथावत ज्ञान कराने के लिए जैसा है वस्तु स्वरूप वैसा ज्ञान कराने के लिए वे नए बल का आश्रय लेते हैं। आगम की भाषा में उन्हें द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए कहते हैं यानी द्रव्य को विषय बनाने वाला वो द्रव्यार्थिक पर्याय ने भेदों को विषय करने वाला वो पर्यायार्थी और अध्यात्म की भाषा में निश्चय नए और व्यवहार नए कहते हैं। ये तो बिल्कुल स्थूल रूप से उसकी उन्होंने परिभाषा की है ज्यादा डिटेल अरविंद भाई को पूछ लेना। शुद्ध ज्ञान से जाने गए पदार्थ के एक देश को जानने वाले ज्ञान या उसके वचन को नए कहते तो नए किसको कहना उसकी डेफिनेशन बताएगी। शुद्ध ज्ञान से जाने गए पदार्थ के यानी पहले पदार्थ को पूरा जाना है और फिर उसको हाँ प्रमाण से जाने गए भी कहेंगे। शुद्ध ज्ञान तो प्रमाण है यहाँ प्रमाण ज्ञान की बात है एक कुशुद्ध की बात ही नहीं शुद्ध ज्ञान की ही बात चल रही है। तो उस पदार्थ के एक देश को जानने वाले ज्ञान एक देश है उसका पर उस ज्ञान या वचन को नए कहते हैं। नए श्रुत ज्ञान के ही भेद है ख्याल में बात ये सम्यक श्रुत ज्ञान के भेद है नए प्रयोजनवश ये जो ज्ञाता है या जो वक्ता है उसके प्रयोजन के कारण उसको किस नए के अवलंबन से शिष्यों को समझाना चाहिए ये उसके अभिप्राय पर निर्भर है। तो नए शुद्ध ज्ञान के ही भेद है और नयों के मूल भेद दो है, शेष सब नए उन्हीं के भेद प्रभेद है। वैसे नयों का बहुत बड़ा विस्तार है, तो अभी हम भी उस विस्तार में नहीं जाएंगे, अपना विषय नहीं है। दोनों ही नयों से वस्तु तत्व का निर्णय करना उचित है। ये तो व्यवहार है, व्यवहार है, झूठा है, वो बात नहीं है। वो झूठा क्यों है? वो तो निश्चय को बताने वाला है। व्यवहार नय का प्रयोजन क्या है? निश्चय को बताना। और निश्चय में तो कुछ कथन की बात ही नहीं है, बस वो अभेद अखंड है, एक जो कुछ है, जहां जो विषय होगा उसका। क्योंकि तो इसलिए दोनों ही नयों से वस्तु तत्व का निर्णय करना उचित है। निर्णय करने के लिए बहुत आवश्यक है, उसका अवलंबन लेने की बात नहीं है। निर्णय होने पर फिर वो नयों के विकल्प छोड़कर अखंड वस्तु को जानना। तो दोनों ही नयों से वस्तु तत्व का निर्णय करना उचित है, यही उनका बल है। ऊपर बैठे ना, दोनों ही नए बल का आश्रय लेते हैं, आश्रय लेते हैं, वस्तु तत्व का निर्णय कराते हैं। उसी के कारण सर्वथा एकांतवादियों के द्वारा उस निर्णित तत्व में बाधा नहीं दी जा सकती। क्या कहते हैं? ये दोनों ही नयों से वस्तु का यथार्थ निरूपण करते हैं, दोनों ही नयों से, व्यवहार नय से भी और निश्चय नय से भी। इसलिए जो सर्वथा एकांतवादी है, कोई तो कहते हो द्रव्य वो पर्याय है ही नहीं, वो तो ध्रुव ही ध्रुव है, पर्याय होती नहीं। तो जो द्रव्यार्थी की अपेक्षा वो सर्वथा वैसी वस्तु बता, कोई कहते पर्याय ही पर्याय नहीं, द्रव्य वो तो क्षणिक ही है, वो तो बस वो द्रव्य ही नष्ट हो जाता है, तो उसने पर्याय की अपेक्षा नष्ट होता है ये बात नहीं मानी। किसी विशिष्ट नये से जो कथन होता है उसने सर्वथा मान लिया है, इसलिए जो सर्वथावादी जो एकांतवादी है उनके द्वारा उस निर्णित तत्व में, कौन सा निर्णित? दोनों ही नयों से जो तत्व निर्णित कर दिया है, जो जिनागम की जैन आचार्य की विशेषता है, उसको एकांतवादी खंडित नहीं कर सकते। ये बात कहते हैं कि सर्वथा एकांतवादियों के द्वारा उस निर्णित तत्व में बाधा नहीं दी जा सकती। यानी वो एकांतवादी जिनागम के तत्वों को खंडित नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते, बाधा नहीं डाल सकते। ऐसे जिनागम के व्याख्या का आराती आचार्य वंदनीय है। यानी अभी जो हुए हैं उनके बाद, महावीर के बाद परंपरा जो हुई है वे भी वंदनीय है, क्योंकि उन्होंने हमें दोनों ही नयों से वस्तु तत्व को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आराती यानी परंपरा, आराती का एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है? निश्चय लिखा है, हाँ हाँ, आराती कहाँ लिखा? आराती नहीं नहीं नहीं, उसका अर्थ कहाँ? आचार्य आराती कहलाते हैं, ठीक है। तो जिनागम, ऐसे जिनागम के व्याख्या था आरातीय आचार्य वंदनीय। प्रत्येक आचार्य आरातीय नहीं होते, यानी जिन्होंने ऐसा वस्तु तत्व को निर्णय करने के लिए दोनों नयों से कुछ रचना की उनको कहते होंगे आरातीय। उक्त विशेषताओं से युक्त आचार्य ही आरातीय कहलाते। हमने नहीं कि नए शुद्ध ज्ञान के वो भेदे दोनों ने उनसे वस्तु तत्व का निर्णय ऊपर भी बताया था उन्होंने, आराती आचार्य के द्वारा रचित जो कालिक उत्कालिक भेद से अनेक प्रकार से वो जो रचना की उनको आराती आचार्य के। आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार सिद्ध भगवान के स्वरूप का तथा उसकी प्राप्ति के उपाय का कथन करने में समर्थ परमागम के उपदेष्टा यानी उपदेश देने वाले रचयिता और व्याख्याता होने से, जिन्होंने अत्यंत महान गुरु संज्ञा को प्राप्त किया है, उन अरहंत भट्टारक देखो महान गुरु है परम गुरु अरहंत भट्टारक, ये इनको भट्टारक या अरिहंत भगवान की पत्नी है, बाद में वो भट्टारक वगैरह हुए वो बात नहीं है। गणधर श्रुत केवली अभिन्न दस पूर्वी प्रत्येक बुद्ध और इस युग के धर्माचार्यों की स्तुति करके, ये आराध्य ने इस युग के बाद। अब वक्ता और श्रोताओं का कल्याण करने वाले उनके धर्मोपदेश का स्तवन कर, ये मंगलाचरण में पंच परमेष्ठी का तो स्तवन हुआ है। पंच परमेष्ठी ऐसे अलग नाम नहीं लिए, पंच सिद्धों को, अरिहंत भगवान को, फिर गणधर आदि जिन्होंने ये ग्रंथों की रचना की है, आराध्य आचार्यों तक सबकी वंदना की, स्तुति की। अब कहते उन्होंने जो धर्मोपदेश दिया है उस उपदेश का भी स्तवन, क्योंकि उसी के द्वारा हमें कल्याण अपना कर सकते। पांच नंबर, धर्म के विदंती तत्र धुनते संदेह मन्ये परे तद्भ्रांते रपयन्ति सुष्टु स्तमुषन्त्यन्येऽपि वा श्रोतारो यदनुग्रहादहर हर वक्ता तु रुन्धन्नघम् विश्वग्निर्जरयश्च नन्दति शुभे सानन्दताद्देशना। नीचे उसका अर्थ दिया पांच नंबर में, जिस देशना यानी धर्मोपदेश के अनुग्रह से, उसको देशना कहते हैं, उपदेश को देशना कहते हैं। कौन सा उपदेश? पैसा कैसा कमाना चाहिए, मोक्ष मार्ग संबंधी, मोक्ष मार्ग प्रकट करने संबंधी जो उपदेश मिलता है, जिसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, उसको देशना कहते हैं। हाँ, वो पूर्व में होती है और फिर उस देशना को सुनकर तत्व का निर्णय करेगा वो, बाकी वो सब पंचलब्धि में
जो देशना तो जीव है
उनसे ही मिलता है। देशना तो ज्ञानी की, उसी को देशना कहते हैं, क्योंकि जिन्होंने अनुभव पूर्वक बताया है उसी को, और हम भी जो ये पढ़ेंगे या सुनेंगे वो तो उनकी कुमकुम की वाणी है या आचार्यों की वाणी है या हम कहेंगे बीच में जितने ज्ञानी हुए उनकी वाणी है। पढ़कर सुनाने वाला कोई अपनी बात नहीं बता रहा, समझ? तो ये देशना पे नहीं होती, देशना तो ज्ञानी की प्रत्यक्ष ही होनी चाहिए, ये नियम है, जो नियम सार में भी बताया, अन्य ग्रंथों में भी बताया। हो सकता है केश भव में सुनकर या ग्रंथ पढ़कर पूर्व में अगर देशना मिली हो, तीन तीन भव तक वो चलती है, वो भी धारणा मिली होगी तो, और संगी पंचेन्द्रिय पना चल रहा हो तो, बीच में एकेंद्रीय पर्याय में चला जाएगा तो धारा टूट जाती है उसकी, परंतु उसी को ज्ञानी की ही जो है देशना, उसी को यहाँ देशना रूप से लिया। तो जिस टेप तो नहीं कहा, ये प्रश्न गुरुदेव थे ना, तभी उनके सामने भी आया था और बेंचरी बेन को भी पूछा गया था, उन्होंने कहा था ये टेप की सीरीज की वो देशना नहीं हो सकती, इवन उसमें आई है वो डायरेक्ट ज्ञानी के, वहां तो दर्शन हो के उनके उषमादि की बात उठाई थी उन्होंने, हाँ नियम सर में आई है। देखो जिस देशना इन्हें धर्मोपदेश के अनुग्रह से, अनुग्रह से उसका उपकार, उसका निमित्त, प्रतिदिन अनुग्रह इसलिए कहते हैं, हमारा वो उपकार हुआ ना इसलिए अनुग्रह शब्द है, परंतु यह निमित्त रूप से उसको लेना। प्रतिदिन अनेक श्रोतागण धर्म को ठीक रीति से जानते हैं, अनेक श्रोतागण अपने संदेह को दूर करते हैं, क्योंकि मन में कुछ भ्रांतियां चलती रहती है, ये तो सच्चा धर्म उपदेश सुनने से वो भ्रांति दूर हो जाती है, या कोई किसी का निर्णय नहीं हो रहा, संदेह है, कोई शंकाएं हैं तो वो दूर हो जाती है। अनेक अन्य श्रोतागण धर्म विषयक भ्रांति से बचते हैं, क्योंकि वो तो ये भ्रांतियां तो चलती रहती समाज में, तो ये सुनने के कारण वो उस भ्रांति से बचते हैं, उनके वो भ्रांति उत्पन्न नहीं होती। कुछ अन्य श्रोतागण धर्म पर अपनी श्रद्धा को दृढ़ करते हैं, पहले तो ऐसे वैसे चलता था परंतु उनकी दृढ़ता आती है, तथा कुछ अन्य श्रोतागण धर्म का पालन करते हैं, पालन करते हैं समय दर्शन आदि प्रकट होते हैं, और जिस देशना के अनुग्रह से वक्ता प्रतिदिन अपने शुभ परिणामों से आगामी पाप बंध को चमू ओर से रोकता है। वक्ता को भी कुछ फायदा होता है क्या, इसे पूछ रहे हैं। धर्मोपदेश दे रहा है तो वो उसका स्वयं का स्वाध्याय है, ऐसा नहीं कि दूसरों को केवल समझा रहा है, उसकी भी दृढ़ता हो रही है, उसका भी उसमें उपयोग है, उसमें भी अन्य बातें बता रहा है तो उसमें भी उसकी जो उपयोग की एकाग्रता हो रही है, केवल वो बड़बड़ाता नहीं है। तो कहते उसको भी प्रतिदिन अपने शुभ परिणामों से आगामी पाप बंध को, क्योंकि अन्यत्र कहीं उसका उपयोग नहीं है, बस एक विषय की ओर उसका उपयोग लगा रहा है। मैं तो कहूंगी बोलने से भी लिखने में और उपयोग की एकाग्रता हो जाती है। चहु ओर से रोकता है और पूर्व उपार्जित कर्म की निर्जरा करता हुआ, क्योंकि जो उदय में आने वाले कर्म तो खिर ही जाते हैं और ज्ञानी है तो उसकी तो निर्जरा चल ही रही है, तो ऐसे समय में तो और ज्यादा निर्जरा होती है, करता हुआ आनंदित होता है। वह देशना फूले फले उसकी खूब वृद्धि हो, यानी उस देशना को यहाँ नमस्कार कर इसकी विशेष चर्चा कर जाएंगे। जानवानी के ज्ञान ते सूझे लो कारो सो आई मस्तक नम सदा देतो।